there are certain questions by the doctors from HIMS. Pehla sawal Seema ka, how can we give hot water immersion to unconscious person with liver damage and chronic kidney disease? देखिए, हॉट वाटर इमर्शन तो जब वो अनकॉन्शियस है तब देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है. डॉक्टर इंदुप्रीत, योर क्वेश्चन इज एच बी कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग, एक्सट्रीम वीकनेस, लेगलेस फीलिंग एंड नॉट एबल टू वॉक, ब्लडी वॉमिटिंग आफ्टर लेग एलिवेशन, इफ पोटेशियम कॉन्टिन्यूस टू रेज अप टू 6.5 देन इज इट नॉट टू बी कंसिडर्ड एट ऑल. देखिए, पोटेशियम 6.5 कुछ भी नहीं होता, 8 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट. सो पोटेशियम को आप छोड़ दो. और जो लोग पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं अक्सर उनका HB फॉल करता ही करता है, एक्सट्रीम वीकनेस, ये सब चीज़ें होती ही हैं जो सिम्टम हमने बताए हैं. खैर, ये क्लासिक सिम्टम है. इस सिम्टम का मतलब ये है कि हमारी जो थेरेपी है, क्योंकि हमारी जो थेरेपी है हॉट वाटर इमर्शन हेड ऑन टेल थेरेपी, इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू वर्क. तो ऐसे में अगर ऐसा कोई पेशेंट है, और या फिर जो पेशेंट हॉट वाटर इमर्शन एंड लेग थेरेपी, हेड डाउन टिल थेरेपी ले नहीं पा रहा है और ये सारे क्लासिक सिम्टम्स हैं, तो उनको फिर इमरजेंसी डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है. आप ये देखो कि जो पोएम का पोस्टर हमने बनाया है, उस पोस्टर के सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे तो वहाँ पे डायलिसिस कौन कौन सी कंडीशन में कराना की ज़रूरत है उसका पूरा लिस्ट दिया है. गो थ्रू दैट. नेहा सैयद, यह आपका सवाल है, माई बिग कन्फ्यूजन इज रिलेटेड टू पोटेशियम, इफ़ इट गोज़ अबव 6, गुड गोइंग पेशेंट गोज फॉर इमरजेंसी, सो हाउ वी वर्क ऑन दिस, इन हाउ मेनी डेज वी सजेस्ट फॉर KFT डायलिसिस स्किप्ड मोर देन 1 month. ऑल्सो हाई इचिंग इज ऑल्सो आफ्टर इंक्रीजिंग पोटेशियम ऑयल मसाज इज़ नॉट वर्किंग ऑन इट. देखिए, आपने देखा कभी कि पोटेशियम बिल्कुल नॉर्मल है तब भी उनको डायलिसिस पे कर जाना पड़ता है? पोटेशियम नॉर्मल है लेकिन इचिंग है, स्वेलिंग है, और एक्सट्रीम वीकनेस है, और यूरिनपुट 0 है, उल्टियाँ आ रही हैं, राइट. तो पोटेशियम नॉर्मल रहता तब भी ये होता है. तो पोटेशियम ही रिस्पॉन्सिबल ऐसा ज़रूरी नहीं है, पोटेशियम का कोई कनेक्शन है नहीं. आपका अगला सवाल है डॉक्टर सुषमा, बहुत से डायलिसिस के पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले से DIP डाइट पर नहीं होते, फिर उनकी डाइट, मेडिसिन सब एक साथ चेंज करना सही है? डाइट तो एकदम से चेंज करना है, वो इसलिए क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती. दवाइयाँ ये है कि जैसा मैंने अपने ट्रेनिंग में बताया, कुछ दवाइयों को एकदम से छोड़ा जा सकता है, कुछ दवाइयों को धीरे धीरे बाद में टेपर डाउन करना है, वो भी मैंने अपने ट्रेनिंग में बता दिया था. बाकी दवाइयों के बारे में सटीक जानकारी डॉक्टर पांडे ही दे पाएंगे. श्वेता रानी, आपका सवाल है, वॉन्ट टू नो अबाउट द किड्स नेफ्रोटिक डिजीज़, हाउ विल वी गिव देम ट्रीटमेंट वाया ग्रैड. देखिए, बच्चों का जो ट्रीटमेंट होगा वो भी सेम तरीके से होगा जैसे बड़ों का होगा, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कम हो सकता है. नया सईद, आपका अगला सवाल है, इफ कैथेटर इज इन द स्टमक एरिया एंड पेशेंट कैन डू हॉट वाटर इमर्शन, वी सजेस्ट लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बट इट इज़ नॉट वर्किंग, देन वॉट टू डू. वन पेशेंट हुज ब्लड ओजिंग 2 times इन माउ इन ए मंथ फ्रॉम फिस्टूला, सो इज दिस ड्यू टू हॉट वाटर इमर्शन क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द फिस्टूला और वेन इन द ब्लॉक बिकॉज ऑफ फिस्टूला, इन हाउ मेनी डेज वी कैन सजेस्ट टू रिमूव फिस्टूला इफ द पेशेंट इज ओके विदाउट ट्रीटमेंट, स्किप डायलिसिस अप टू 3 months. 3 महीने, 1 महीने भी स्किप करे तो हम बोल सकते हैं फिस्टूला निकालने को. ये सारा डिपेंड करता है पेशेंट के डिसिप्लिन पे, राइट. अगर फिस्टूला उसने निकाल दिया, उसके बाद डिसिप्लिन भी नहीं रहा जैसा कि अक्सर हमने देखा है, तो दोबारा से वो उसको ओरिजिनल डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है, नंबर वन. नंबर टू, ये जो पेट में अगर वो कैथेटर है भी तो उसमें बाथटब में तब भी बैठ सकते हैं, उसमें तो स्विमिंग करना भी अलाउड होता है. और अक्सर फिस्टूला ठीक से नहीं लगाते या ठीक से लग नहीं सकता, तो फिस्टूला के अपने बहुत सारे डिसएडवांटेज और अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते ही रहते हैं. फिस्टूला अपने आप में एक बीमारी पैदा करने वाले एक प्रोसीजर है. आयन हल्दर, या जो पेशेंट को छुट्टी होने के बाद घर जाने में 1-2 दिन टाइम लगेगा और मोर देन दैट टाइम, वो टाइम ट्रेवल के दौरान हॉट वाटर मशीन HDT नहीं कर पाएंगे, तो बीच रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ऐसे पेशेंट जो बहुत दूर रहते हैं, हम उनको यही एडवाइस करते हैं, आप आओ भी मत हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल आने में 2 दिन लगाएंगे और जाने में 2 दिन लगाएंगे, तो ऐसे में दिक्कत होगी, होती भी है. तो फर्स्ट एडवाइजरी, डू नॉट कम, और अगर आए हैं तो फ्लाइट लेके जाइए, और वो भी नहीं हो सकता तो जब तक घर नहीं पहुँचे, कुछ खाना नहीं है, और हेड डाउन टिल थेरेपी की कोशिश करते रहना, हॉट वाटर इमर्शन तो नहीं हो पाएगा, हेड डाउन टिल थेरेपी और पैर लटका के नहीं बैठना है। तो इस तरह से हम उनको गाइड कर सकते हैं, करते रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि वाइल्ड देयर ट्रैवलिंग इन ट्रेन हमारे इमरजेंसी ग्रुप से वो जुड़े रहते हैं, और आधी रात को भी कोई दिक्कत आती है तो अकॉर्डिंगली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वी ट्राई टू सॉल्व इट। नेहा सईद आपका है, इन सम सीकेडी पेशेंट केसेस वेट इंक्रीजेज आफ्टर हॉट वाटर इमर्शन एज पेशेंट सेइंग लाइक दिस एंड दे फील मोर स्वेलिंग आफ्टर हॉट वाटर इमर्शन, सो एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर दिस? नेहा ऐसा होता नहीं है कभी, अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो आपको ये देखना है वेइंग मशीन ठीक नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। श्वेता रानी आपका सवाल है, बिकॉज आई हैव सम किड्स लाइक 1.5 ईयर ओल्ड बॉय विद एन हाइपरटेंसिव सिम्टम एंड 11 ईयर ओल्ड गर्ल, सो द प्रोटोकॉल टू बी प्रिस्क्राइब डेट फॉर द यंगर इज सेम और डिफरेंट? देखिए इसमें यह है कि आप जब बोल रहे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसको क्या क्या सिम्टम है ये बताइए पहले। बहुत छोटे बच्चे जो हैं 1.5 साल के, उनको सिर्फ डाइट चेंज करने से, डेयरी प्रोडक्ट बंद करने से ही वो एकदम ठीक हो जाते हैं, उनको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप बता रहे हैं वो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इट, सिम्टम्स के बेसिस पे बता रहे हैं या डायग्नोस्टिक के बेसिस बता रहे हैं? अगर तो सिम्टम्स के बेसिस बता रहे हैं, स्टार्ट विद द DIP डाइट, स्टॉप डेयरी प्रोडक्ट एंड पैक फूड, उतने में ही हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। अब नहीं होता तो आता है फिर क्रेडिट सिस्टम को कैसे अप्लाई करें। हालांकि बच्चों में मैंने देखा जस्ट बाय चेंजिंग द डाइट बच्चों का जो थोड़े बहुत स्वेलिंग की सिम्टम होती है, खुजली की सिम्टम होती है, वोमिटिंग की होती है, वीकनेस की होती है, वो ठीक हो ही जाती है। डॉक्टर अनु वी आपका सवाल है, वी हैव गिवन डेमो ऑफ लिब्रा प्रो पोएम बॉक्स एक्सप्लेन्ड। देखिए लिब्रा पोएम प्रो में लोगों को, सारे डॉक्टर्स नर्स को ये भी आना चाहिए, एटलीस्ट जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैंडल करेंगे, कि वो लिब्रा प्रो को रीड कैसे करें, रीडिंग कैसे लें, उसके अंदर जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को आपको पढ़ना है। क्या आपने ग्राफ पढ़ी, क्या आपको ग्राफ समझ आया? क्योंकि वो जो ग्राफ है वो बार बार बनता रहेगा, उस ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना वो देखना आना चाहिए। सुषमा आपका सवाल है, सर डायलिसिस की मेडिसिन को टेपर डाउन करने के लिए एलोपैथी डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा क्या? डायलिसिस के पेशेंट को ग्रीन लीफ कितनी देनी है, कौन कौन से फ्रूट वेजिटेबल देने की देखिए कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल दिया जा सकता है। एलोपैथी की दवाई को टेपर डाउन करने का जो नॉर्मली नियम है वो एलोपैथी के डॉक्टरों के हाथ में होता है, जिस तरह से होम्योपैथी की दवाई को टेपर डाउन करने के लिए होम्योपैथी के डॉक्टर ही द बेस्ट गाइड, आयुर्वेद की दवाई को टेपर डाउन करना आयुर्वेद ही कर सकते हैं, जो जिस चीज़ का पढ़ा लिखा है उसी को अलाउड है उस वाले पद्धति की दवाइयों को छेड़छाड़ करना, ये बात हमें समझनी होगी। तो कोई अगर पेशेंट आता है और उसके पास होम्योपैथी की दवाई है तो हमारे हॉस्पिटल जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं उन्हीं को लूप में लेना पड़ेगा, आयुर्वेद की दवाई तो आयुर्वेद के डॉक्टर को लूप में लेना पड़ेगा, एलोपैथी की दवाई तो एलोपैथी के डॉक्टर को लूप में लेना पड़ेगा, या पेशेंट को बोलना पड़ेगा आपके जो प्रीवियस डॉक्टर हैं उन्हीं के कंसल्टेशन में धीरे धीरे उनको कम करना है। कई बार पेशेंट खुद से डिसीजन लेके भी कम करते हैं, पेशेंट सेल्फ टेपरिंग भी करते हैं जो कि उनको अलाउड है, क्योंकि वो जैसे शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन का पेशेंट है, वो तो पेशेंट खुद ही सेल्फ करते हैं, और कई बार नर्सेज जो हैं नर्सेज भी अलाउड होती हैं पेशेंट की दवाइयों को मैनिपुलेट करना, टेपर डाउन करने के लिए, इस तरह से इनके जो नियम बने हुए हैं। सो दीज वर द क्वेश्चन जो आपने पूछे। अब इसके बाद जो हमने ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग के जो जो वीडियोज़ आपको देखने बोले वो सारे वीडियोज़ देखिए, और ख़ास तौर पे जो जो ट्रेनिंग जो जो प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर को रीड करना इंस्टॉल करने की प्रैक्टिस, चाहे कार्डिक कंप्रेशन की प्रैक्टिस, या फिर चाहे हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी या हेड डाउन टिल थेरेपी के पीछे का साइंस क्या है उसको जानने के लिए जो वीडियोज़ हमने लिंक में दी उनकी उनको देखना, तो सारे चीज़ देखिए आप अप टू डेट हो जाइए, सो दैट आई कैन टेक अ स्मॉल क्विज एंड क्वेश्चन एंड एग्जाम टू इंश्योर कि आपको सारा कुछ ठीक से समझ आया, और एन मौके पे जरूरत पड़ने पे उसको यूज़ करेंगे। पोएम प्रोटोकॉल को समझना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाला है।